आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी विराजमान हैं। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। हमारे यज्ञ की स्थापना 1936 में हुई और दीदी का लौकिक जन्म यज्ञ स्थापना से एक वर्ष पूर्व 1935 में हुआ, मुंबई माया नगरी में। वहां पर आपने मेडिकल स्टडीज की और लगभग मेडिकल स्टडी पूरी होने को आ गई थी, पूरी हो ही गई थी। आपको बाबा का ज्ञान मिला 1962 में और बाबा पे विश्वास, निश्चय, और उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिस और मेडिटेशन प्रैक्टिस दोनों आरंभ की। 1966 में बाबा ने आपको सेवा केंद्र खोलने के लिए भी निमित्त बनाया। आप पहली वो कन्या हैं जिसको लौकिक पिता ने सेवा केंद्र दहेज के रूप में दिया, और तब से आपने मेडिकेशन और मेडिटेशन प्रैक्टिस दोनों शुरू करके भाई बहनों को लाभ पहुंचाया। लेकिन फिर 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवा के अर्थ चुना, तो 1971 में आप पहले लंदन गए, यूके गए, वहां पर सेवाएं की और लगातार विदेश की ही धरनी पर अलग अलग स्थानों पर भ्रमण किया, जैसे यूके, लंदन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर 1971 से 78 तक आपने भ्रमण करके बाबा के सेवा स्थान तैयार किए। और 1978 में ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया, और तब से लेकर 2008 तक एशिया पैसिफिक रीजन में अपने सेवाओं का इतना विस्तार किया कि उस रीजन के अंतर्गत आज की डेट में 18 देश हैं जहां पर बाबा के सेवा केंद्र चलते हैं। तो आप रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं एशिया पैसिफिक रीजन के। और उसके बाद तो 2009 में बाबा ने आपको भारत बुलाया ज्ञान सरोवर अकेडमी का डायरेक्टर पद संभालने के लिए। 2009 से दीदी हमारे पास हेडक्वार्टर में ही रहते हैं, ज्ञान सरोवर में। और फिर तो कैसे, समय के साथ साथ हमने देखा कि दादियां अव्यक्त होती चली गई, तो दीदी के कंधों पर एक के बाद एक जिम्मेवारियां बढ़ती गई। वर्तमान में आप यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं, बहुत सारी गुप्त रीति से जिम्मेवारियां संभालते हुए भी बहुत हल्के रहना, बहुत ईजी रहना वो दीदी के जीवन से झलकता है। बहुत ही उपरा, बहुत ही निर्मल और बहुत ही मितभाषी, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़े बड़े संदेश समझा देते हैं। तो ऐसी हमारी दीदी, जो आज हम कहते हैं कि हम साकार मम्मा बाबा के समय तो नहीं आए, और दादियां भी लगभग अभी अव्यक्त हो चली है, लेकिन जिन्होंने साकार मम्मा बाबा की पालना ली, जिन्होंने साकार दादियों की पालना ली, जिन्होंने बाप दादा के एक एक ज्ञान के महावाक्य को अपने जीवन में उतारा, ऐसी हस्ती हमारे बीच है, हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो आज हम उनसे सुनेंगे कि प्रवृत्ति में रहते पवित्रता का पालन कैसे करें। तो पहले कुछ मिनट, हम कहें लगभग 20-25 मिनट दीदी इस पर अनुभव युक्त प्रकाश डालेंगे इस विषय पर, और उसके बाद आप सभी को खुली मार्जिन रहेगी, दीदी से आप चाहे जो क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं, चाहे वो ज्ञान का हो, योग का हो, धारणा का हो, सेवा का हो, या दीदी के पर्सनल अलौकिक जीवन का अनुभव, विदेश की सेवाओं का अनुभव, जो भी आप दीदी से पूछना चाहें आपके लिए खुली मार्जिन है। तो पहले सुनते हैं, प्रवृत्ति में रहते पवित्रता का पालन कैसे करें। आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कलयुगी गोवर्धन पहाड़ उठाकर सत्युगी नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। करावनहार हमारी यादगार गोप गोपी भगवान को अंगुली देते हैं गोवर्धन पर्वत उठाने के। जब ये रियलाइज होता है कि हम सब ईश्वर की संतान है, चाहे लौकिक में पति पत्नी है, माँ बाप बच्चे हैं, परंतु वास्तव में हम सब भाई बहन हैं। तो जब ये रूहानी ज्ञान मिलता है, भाई बहन की या भाई भाई की दृष्टि हो जाती है, तो भाई बहन का आपस में संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध छूट जाता है। तो जितना हम रूहानियत में रहेंगे, हमारी दृष्टि वृत्ति रूहानी बन जाएंगी, तो क्या होगा, हम एक दो को भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे। सन्यासी तो हद का सन्यास करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, अपनी जिम्मेवारी पत्नी बच्चों को संभालने की छोड़ देते हैं। परंतु बाबा हमें कहते हैं, जिम्मेवारी निभाओ। पत्नी बच्चों को संभालो या पति बच्चों को संभालो, उनका पालना करो, परंतु मेरापन छोड़ दो। ट्रस्टी होकर निमित्त बनकर उनको संभालो। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, सब विकारों को छोड़ना है। काम क्रोध मोह द्वेष वैर ईर्ष्या सब छोड़ना है, और अंश मात्र भी ना रहे, क्योंकि अंश रहेगा तो वंश हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अंश भी ना रहे अपवित्रता का, और सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं ब्रह्माचारी बनना है, ब्रह्मा के आचार विचार को फॉलो करना है। तो पहले तो हम ये देखें कि विकारों का सूक्ष्म रूप क्या है, क्योंकि विकारों का सूक्ष्म रूप छोड़ना है। तो सबसे लास्ट देहभान और अहंकार जाता है, ईगो। क्या है कि मेरा विचार, मेरी विशेषता आदि आदि। तो जिसको ईगो होगा उनके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि अपने को बड़ा समझेगा कि मैं विशेष हूँ, और दूसरों की कमी देखकर उनका अपमान करेगा कि आप तो बुद्धू हो, समझते नहीं हो, इतना भी अक्ल नहीं आदि आदि कहकर उनका इंसल्ट करेगा। और अंदर एक, बाहर दूसरा। अंदर दुखी होंगे, बाहर हंसता रहेंगे। सार्केस्टिक होंगे, मैं पना बहुत होंगे उसमें। और नाजुक होगा कि मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया। बॉसी होगा और अथॉरिटी से काम करेगा, हुक्म चलाएगा। क्रिटिसाइज करेंगे औरों की, तो इसलिए हमको देखना है कि हम एक तरफ नशा भी हो कि हम किसके बच्चे हैं, किसके स्टूडेंट हैं, क्या बनने वाले हैं। ब्रह्मा बाबा भी हमेशा कहता था ना, कल जाकर मैं ये कृष्ण बनूंगा। तो ये नशा रहे कि कल जाकर हम कृष्ण बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु देहभान का ईगो ना हो। नशे में देही अभिमानी है, कहेंगे कि हम तो देवता बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे, आप भी बनो। और ईगो वाला कहेगा तुम कभी नहीं बन सकेगा, तुम्हारे में इतनी अक्ल नहीं है, दैवी लक्षण नहीं है आदि आदि। अभी जिसको देहभान है उसकी निशानी क्या है? देहभान वाले हैं उनको अपनी दया आती है, मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई सेवा नहीं देता, मेरी माँ है, मेरे भाई बहनों को ज़्यादा प्यार करती है, मुझे नहीं करती, ऐसे ऐसे वो अपने पर दया मांगता, वो नर्वस हो जाता है, सभा में बोलना होता है या VIP के साथ बोलना होता है तो नर्वस हो जाता है। देवभान वाला बाहर मुखी है, बाह्य मुखी, जहाँ भी जाएगा देखेगा ये मकान कैसा है, ये फर्नीचर कैसा है, रास्ते में भी देखेगा कि इन्होंने कैसा कपड़ा पहना है, साड़ी ब्लाउज मैच होते हैं या नहीं। जो खर्चा किया है ठीक किया है या नहीं, और पूछेगा कहाँ से ये साड़ी खरीदी, कितने में खरीदी, क्या हुआ। और चाहता है कि हमारे तरफ सब अटेंशन देवे, इसलिए नखरे करते हैं और कपड़े ऐसे पहनते हैं जो सब पूछेंगे, अच्छा ये तो बहुत अच्छी साड़ी है, कहाँ से खरीदी। और कई है देवभान वाले जो नेचुरली है, आजकल फैशन क्या है, पतली कमर, मोटापन अच्छा नहीं लगता है। और जो मोटे हैं वो क्या करते हैं, ऑपरेशन कराते, लाइपोसेक्शन, फैट निकाल देते हैं आर्टिफिशियली। और ब्यूटी सलून में जाएंगे और खास ओकेजन होगा, कहाँ शादी वगैरह जाना है तो जाने के पहले जरूर ब्यूटी सलून में जाएंगे। और नवरात्रि में भाई लोग भी जाएंगे और कपड़े ऐसे सिलवाएंगे, डांस करना प्रैक्टिस करेंगे, विशेष पंजाब में भी सासू ससुरा भी डांस करते हैं, तो नए नए डांस के स्टेप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उनको लज्जा भी आती है, चिंता भी होती है, और जैसे समाज चलता है ऐसे चलना है। कहेंगे हम ब्रह्मा कुमारी सफ़ेद साड़ी पहनेंगे तो समाज वाले हंसेंगे या कहेंगे विधवा है क्या, तो समाज क्या कहेगा, लोकलाज होती है। और हमारे पास एक बैले डांसर थी, तो उसको उसके टीचर कहते थे वजन बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए, अभी यंग है, भूख तो लगती है तो खा तो लेती है, परंतु फिर हाथ डालकर उल्टे कर देती है ताकि वजन ना बढ़े। जन्म जन्म एक दो की चर्चा करेंगी, फलाना ऐसा है, फलाने ने ये किया वो किया, तो इसलिए बाबा कहते हैं अब देही अभिमानी बनो, देवभान छोड़ो। काम विकार। हम स्थूल में तो संबंध नहीं रखते, परंतु सूक्ष्म में देखो, किसी के पर्सनालिटी से प्रभावित हो जाना ये भी सूक्ष्म अंश है। कामना, इच्छाएं, नाम रूप का प्यार किसी से प्यार करते हैं, उसका नाम और रूप, आकर्षित होना चाहे व्यक्ति चाहे वैभव। कई बार रास्ते में जाते क्या करेंगे, मकान अच्छा देखकर कहेंगे वाह बहुत अच्छा मकान, या कार देखकर कहेंगे वाह ये कार तो बहुत अच्छी है हमारे पास होनी चाहिए। और फैमिलियारिटी देखो, एक दो से प्यार भल हो, परंतु सारा दिन एक दो से बातचीत करें, खुशी का समाचार पहले उनको सुनाएंगे, दुख का समाचार पहले उनको सुनाएंगे, तो बाबा को सहारा बनाए के बजाय उस व्यक्ति को अपना फ्रेंड बनाकर, एक दो को इतना जानते हैं कि वो क्या सोचता होगा क्या बोलेगा सब समझ में आएगा। फिर है मोह, मोह भी जल्दी नहीं छूटता, मेरा विशेष माताओं का मोह होता है पति में बच्चों में, तो मोह के कारण क्या है, कारण क्या है उसका आधार ले लेते हैं। और अपनापन, और उसके ऊपर फिर अथॉरिटी रखते हैं कि मेरा बच्चा है तुमको मेरी मानना है, ये स्टडी करना है, पेरेंट्स है ज़्यादा पर बच्चों को अपनी इच्छानुसार चलाना चाहेंगे। और जिसमें मोह है, समझो कोई माता के चार बच्चे हैं, एक में मोह है, तो क्या करेंगे, उसके लिए पहले चीज खरीदेंगे या उनके फेवरेट जो खाने की डिश है तो उसके लिए निकाल के रखेंगे। और एक माता, आप मुंह के देखना हो तो जब एयरपोर्ट पर जाओ ना, देखो वो बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं पर कितना रोते हैं, आते हैं तो भी रोते हैं जाते हैं तो भी रोते हैं। और एक माता कहे मेरे बच्चे को जलेबी बहुत अच्छी लगती थी, अब वो अमेरिका गया, जलेबी कौन खिलाएगा उसको, तो अभी मैं भी नहीं खाती हूँ जलेबी। लोभ, लोभी है वो कभी संतुष्ट नहीं, कितना भी उसको मिले संतुष्ट नहीं। और खाने में भी उसकी फेवरेट डिश होंगी डबल खाएगा, और फेवरेट डिश नहीं होंगी कहेंगे आज तो मुझे भूख नहीं है। तो नया भी खरीदेंगे और पुराना भी रख देगा, तो स्टॉक उनके पास इतना होगा। और वो स्वार्थी होगा, लोभी और मनहूस होगा, दान पुण्य नहीं करेगा। तो जितना हम अपने अविनाशी खजाने को देखेंगे ना, तो क्या होगा, हम खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। फिर मटीरियल वैभव की हमको इच्छा नहीं रहेगी। क्रोध, क्रोध में खुद भी जलते हैं औरों को भी दुखी करते हैं। उसका सूक्ष्म रूप है चिड़चिड़ापन, उसका कारण है धीर्य नहीं। मैंने एक बार कहा, दो बार कहा, भी कितनी बार कहेंगे, फिर भी करता रहता, तो धीरज नहीं रहती है, सहनशीलता नहीं है। तो जितना सहनशीलता, प्यार, धीर्य धारण करेंगे तो क्रोध छूट जाएगा। और फोर्सफुल होते हैं क्रोध के कारण। हमारे पास एक पति आया, टेबल पर हाथ पसार कर बोलता है, मेरी पत्नी को क्यों आप ज्ञान देते हो ब्रह्मचर्य का, कौन से शास्त्र में लिखा है, उसको आने नहीं दो। मैंने कहा कि ये तो जैसे भगवान का घर है, मंदिर है, मंदिर में पुजारी भक्त को नहीं कहेगा कि नहीं आओ। आपको अपनी पत्नी को नहीं आने देना है तो घर में रखो, मुझे नहीं कहो। और क्रोध का, कई लोग क्रोधी होते हैं, वो आर्ग्यूमेंट बहुत करते रहते हैं, दलीलबाजी। और क्रोध है जिसके साथ तो उसके सामने देखेगा भी नहीं, क्योंकि सामने देखे तो ओम शांति हेलो करना पड़े ना, तो क्या करेंगे, वो यहाँ से आता है तो वो वहाँ चला जाता है कि सामना ना करना पड़े। फिर है केयरलेस, जो केयरलेस है वो ठीक ऑर्गेनाइज नहीं करता है और फिर बहानेबाजी करता है कि मैंने समझा के फलाना करेगा, मैं तो भूल गया। और फालतू खर्च करेगा समय शक्ति संकल्प की फालतू खर्च करेगा, उनको संगम युग की वैल्यू का पता नहीं कि इस समय का वैल्यू क्या है, संकल्प की वैल्यू क्या है, बोल की वैल्यू क्या है। इसलिए व्यर्थ गंवाता है और कहेंगे मुझे कोई परवाह नहीं, होना है वो होगा, ड्रामा में होगा वो होगा। आलस्य आलसी होता है ना, एक स्थान पर बैठा रहता है और बहाना क्या दिखाएगा, मैं थक गया हूं। उमंग उत्साह नहीं, जितना उमंग उत्साह होगा तो आलस्य नहीं रहेगा और जिम्मेवार नहीं। तो हमें बाबा से शक्ति लेनी है उमंग उल्लास की। ईर्ष्या, तो जब हम क्या आजकल यह आदत पड़ गई है कंपेयर करने की, भेंट करने की, तो अपने से कोई ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ज़्यादा प्रशंसा के पात्र है तो ईर्ष्या आएंगी कि उसको सब लाइक करते हैं, मुझे कोई पूछते नहीं। तो इसलिए फिर क्या करना चाहिए, सम्मान बढ़ाना। जितना सम्मान में रहेंगे उतना औरों की विशेषता के लिए रिगार्ड रहेगा, ईर्ष्या नहीं होंगे। वैर भाव, वैर भाव होगा ना तो क्या करेंगे, हिंसा तो स्थूल है मारपीट करना, परंतु क्या करेंगे उसकी निंदा करेंगे, वो आगे बढ़ता है तो उसकी डिफेक्ट बताएंगे, सबको कहेंगे तुमको क्या मालूम वो तो ऐसा है वैसा है, इसने ये किया था वो किया था, तो पास्ट की बातें उसकी बताएंगे और बदला लेने की भावना रहेंगी। और भारत में तो क्या है, कायदा अपने हाथ में ले लेंगे, किसी ने एक्सीडेंट किया है कंप्लेन नहीं करेंगे, लाठी लेके उसको वहीं ख़त्म कर देंगे ड्राइवर को। तो क्या है कि बदला लेने की भावना ना हो, बाबा कहते हैं ना बदल करके दिखाओ। और पवित्रता माना, ईमानदारी, सिंपल, रूहानी दृष्टि वृत्ति स्मृति, हर एक के लिए शुभ भावना, रॉयल ऑल रियल। तो इसलिए हमें देखना है कि हमारे में कोई सूक्ष्म विकार तो नहीं, हम संपूर्ण पवित्र निर्कार्य रहते हैं। ओम शांति।
बहुत सुंदर। पवित्रता माना ही विकारों से हमें मुक्त रहना है, तो एक एक विकार का दीदी ने अच्छी से विश्लेषण करके हमें बताया कि हमें चेकिंग करनी है। जो हम आपको कह रहे थे ना, शाम के योग में बैठकर क्या करो, चेकिंग करो, तो ये अपने में देखना है सब, और परिवर्तन का संकल्प लेना है। तो दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर हमें एक एक विकार की तरफ अटेंशन खिंचवाया। और अभी जैसे आपको कहा कि आपको खुली मार्जिन है, चाहे जो प्रश्न पूछो दीदी को, तो कौन सबसे पहले आएगा, जो ओटे सो अर्जुन, पहले टीचर बहन को ही आएगी। हाँ दीदी, या तो मैं पूछ लूँ, मुझे किसी ने पूछा था दीदी एक प्रश्न कि बाबा के दिनों में भोग कैसे लगता था, जैसे आज लगता है ऐसे ही लगता है या कुछ और सिस्टम थी पहले?
जब मैं ज्ञान में आई तब 12 बजे भोग
जी,
12 बजे भोग लगता,
12 बजे भोग लगता,
भोजन का भोग लगता था, और सब 11:30 बजे तक पहुंच जाते थे, क्योंकि माताएं तो उस समय ही फ्री होती है, सवेरे तो फ्री नहीं होती है, और मेजर स्टूडेंट तो माताएं होती है, तो उन दिनों में भोग 12 बजे लगता था। और भोग के बाद मतलब शुरू में तो संदेश जाती थी ध्यान में, परंतु धीरे धीरे बाबा कहने लगे गो सुन कम सो, क्योंकि कई संदेशी तो बहुत टाइम सूक्ष्म वतन में खेल पाल करती रहती थी, तो सारा समय भोग में ही चला जाता था, गुरुवार का सारा समय भोग में ही
चला जाता, बाकी लोग इंतजार कर रहे,
क्लास नहीं होता था। तो बाबा ने फिर गो सुन का मंत्र पक्का कराया, और बाबा के बाद कई बहनें कहने लगी मेरे में बाबा आता है, मामा आता है, मामा आती है, और मामा आती थी और झाड़ू लगाती थी फिर बहनों ने कहा अभी बंद कर दो, तो अर्ली 70s में भोग लगाना बंद कर दिया, मतलब संदेशी को ध्यान में नहीं जाना है, याद में भोग लगाओ। परंतु फिर सवेरे भोग लगाना शुरू,
तो पहले सुबह नहीं लगता था, क्लास के समय सुबह नहीं लगता था भोग 12 बजे, माना भोग के लिए स्पेशल दोबारा आना पड़ता था सेंटर पर,
मतलब थोड़े आते थे ना सवेरे, भोग में के टाइम ज्यादा आते थे।
और किसी को कोई प्रश्न खुलासा मिला? हमसे किसी ने पूछा था फोन करके कि हमें बताओ कि बाबा के समय में भोग लगाने की पद्धति क्या थी, जो आज की है या कुछ और था, तो आज खुलासा हुआ। ऐसे ही कोई प्रश्न हो आपके मन में, जो भी आप पूछ सकते हैं, बहने भाई माताएं, या दीदी से मैं पूछ लूं, दीदी कह, हाँ आ जाओ सामने आ जाओ, मैं दीदी से एक प्रश्न पूछूंगी। जैसे दीदी ने कहा था कि भारत में तो ऐसा है, तो डेफिनेटली दीदी विदेश में लंबे समय तक रही है, तो थोड़ा सा दीदी आप प्रकाश डालेंगे, आपने क्या अंतर महसूस किया भारत और विदेश के भाई बहनों में?
बहुत फर्क है। भारत में धीरे धीरे ज्ञान में आते, पहले क्लास में आएंगे, फिर धीरे धीरे वेजिटेरियन बनेंगे, फिर समय के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। विदेश में जाट को ज्ञान में आए फौरन पक्का हुआ निश्चय, वेजिटेरियन बन गए, रेस्टोरेंट में नहीं खाना है। क्योंकि एक भाई एक महीने का स्टूडेंट था, मैंने पूछा उसको, तुम रेस्टोरेंट में जाके सैंडविच वगैरह वेजिटेरियन खाते हो? कहता है, बहन जी रेस्टोरेंट का वाइब्रेशन केवा कैसा होता है, मैंने खाता। एक भाई सवेरे कोर्स लेने के लिए 10 बजे आता था, 9 बजे उठता था, यंग था, 9 बजे उठकर 10 बजे पहुंच जाता था। 6 दिन हुआ, 7 दिन हो गया, कोर्स पूरा हुआ, फिर पूछता है अब क्या करना है। हमने कहा हमारा यहाँ क्लास तो 5:30 शुरू होता है, 5:30 से 6 मेडिटेशन, 6 से 7 मुरली, 8वें दिन से 5:30 आना शुरू कर दिया।
तो विदेश के भाई बहन झाटकू हैं और हम सोच सोच के करते हैं भारत।
और ऑनेस्ट भी ज्यादा है, यहाँ तो झूठ बोलना बहुत सहज है,
जैसे कि चलता है ये तो। अच्छा, माता जी का प्रश्न।
ओम शांति। रेस्पेक्टेड दीदी जी ने ज्ञान मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत बहुत, शी इज एट द टॉप मोस्ट दिस थिंग, एंड वी वांट टू नो, हमको भी पुरुषार्थ में और भी आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा युक्तियां बताना है और आपका एक्सपीरियंसेस भी चाहिए।
आप अपने अध्यात्म मार्ग पर बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत शिखर पर पहुंच गए हैं, अब हम बहुत कम समय है हमारे लिए, ऐसी कुछ युक्तियां जिससे बहुत फास्ट तरीके से हम भी शिखर पर पहुंच जाए।
मेन बात है अमृतवेला पर ध्यान रखना है, कर्मयोगी जीवन जीना है और मुरली मिस नहीं कर, सिर्फ सुननी नहीं है, जीवन में लाना है। तो बाबा कहते हैं ना, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, आजकल तो बाबा यही कहते हैं। तो इसलिए बाबा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करो, रोज की मुरली से पॉइंट्स निकालो कि आज बाबा ने ज्ञान का दिया, योग के बारे क्या बताया, धारणा की कौन सी पॉइंट थी, और अपने से चेक करना है कि मैं ये करती हूँ।
बहुत अच्छा, हमको भी सौभाग्य मिला है बीच बीच में कभी कभी दीदी के पास 15 दिन रहने का पास्ट में, तो हम देखते थे दीदी कैसे मुरली लेकर अंडरलाइन करते थे, फिर अलग से अपने नोटबुक में लिखते थे। तो माता जी जो प्रश्न पूछ रही हैं कि हम कैसे शिखर पर पहुँचे, तो पुरुषार्थ करते रहना है। और जैसे दीदी ने कहा कि अमृत वेला, क्या मैं जान सकती हूँ इस सभा में ऐसे कौन से भाई बहन हैं जो अमृत वेले को सचमुच महत्व देते हैं? हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे करें। जो अमृत वेला अक्सर करके मिस हो जाता है, हाथ खड़ा करें। तो भट्टी में परिवर्तन करके जाना है ना, तो यहां से संकल्प करके जाओ, शिखर पर पहुंचना है ना सभी को, तो अमृत वेला हम अवश्य करेंगे, मिस नहीं करेंगे। हम दीदी का खास समय ले रहे हैं ये जानने के लिए कि दीदी आप कैसे शिखर पर पहुंचे हो, तो हम जो शिक्षाएं दे रहे हैं उनको क्या करेंगे, अमल में लाएंगे, मुरली को बहुत अच्छी से पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। और कोई क्वेश्चन किसी का आना चाहता है? कोई दीदी, आपको बाबा ने निर्मल आश्रम का टाइटल दिया, निर्मल आश्रम का टाइटल आपको बाबा ने दिया, वो किस प्रसंग में दिया था?
बाबा हर एक बच्चे को अंदर से जान लेता था, विशेष जब भी कोई आता था ना, बाबा ऊपर से नीचे लेकर देखता था कि इसमें देहभान है, देही अभिमानी है, दृष्टि वृत्ति कैसी है, और जब गोद में लेता है तो ये भी समझ जाते हैं कि पवित्रता कितनी है। तो मेरे में उन्होंने देखा पवित्रता है, और निर्मल माना क्लीन स्वच्छ, और आश्रम माना पवित्र, तो इसलिए मेरा नाम ही था निर्मला, तो निर्मल आश्रम के।
और आपको आपके पिता ने दहेज में सेवा केंद्र दिया, वो कैसे प्रसंग शुरू हुआ?
जब मैं ज्ञान में आई 62 में, तो सिर्फ दो ही सेंटर थे, एक सायन में जो अभी भी वही है, और एक कोलाबा में। तो सेंटर फ्लैट में हो ये शोभता तो नहीं है, आश्रम है वो होना चाहिए, जैसे सेपरेट बंगलो टाइप। तो रमेश भाई जो बम्बई में थे, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम जरा जांच करो ना, क्योंकि मैं रहती थी कांदीवली, जो कि सीबीडी से 20 मील के करीब दूर है। तो कहा कि वहाँ शायद सस्ते मकान मिलते होंगे, आप जरा देखो। तो मकान ढूंढने के पहले मैंने सोचा कि हमारे लौकिक पिता का बंगलो था, उसके पीछे जमीन का प्लॉट भी था। तो मैंने ब्रह्मा बाबा से कहा, मैं हमारे लौकिक पिता को पूछूं ये प्लॉट के लिए। तो बाबा ने कहा, यार यदि तुम्हारा बाप जमीन देता है तो अलौकिक बाप मकान बनाएगा। मैंने लौकिक पिता से पूछा तो कहे, नहीं नहीं लड़कियाँ इतना नज़दीक नहीं हो, तुम फ्लैट ढूंढो। वो भी तो बिजनेसमैन था, प्लॉट का कितना खर्चा होता है और फ्लैट का कितना खर्चा होता है। मैं तुमको फ्लैट का दूंगा, क्योंकि मेरी सब बहनों ने शादी की तो डावरी में एक दो बहन को मकान फ्लैट दिया था, इसलिए मैं जानती थी कि उसके पास मेरे लिए पैसा पड़ा है, तो इसलिए मैंने मांगा। तो फिर मैंने फ्लैट ढूंढना शुरू किया, और उसने कहा था 20,000 63-64 में, और मैंने 40,000 खर्च किया, दो फ्लैट लिए और एक फ्लैट का हॉल बनाया, क्योंकि नहीं तो कमरे 10x12, 12x14 ऐसे कुछ होते थे। तो इसलिए मैंने दो फ्लैट लेकर एक फ्लैट का हॉल बनाया, और एक फ्लैट का, जैसे बेडरूम, सिटिंग रूम, किचन, बाथरूम। तो पिताजी ने दे दिया फर्निश करके।
एक प्रश्न आया है, विकर्म विनाश होने के लिए योग लगाना है, ऐसा बाबा कहते हैं, परंतु दूसरी जो बात कही मुझे याद नहीं आती ऐसी। बाबा ने यह भी कहा है कि विकर्म विनाश होने के बाद ही योग लग सकता है।
योग के बगैर थोड़ी विकर्म विनाश होंगे, तो इसलिए पहले योग लगाना है। परंतु जब तक विकर्म है तो इतना दीप योग नहीं लग सकता है। और जैसे भारी होते हैं, बोझा होता है ना,
जी जी,
विकर्मों का बोझा होता है, तो इतना भारी होते हैं तो नेचुरली इतना योग नहीं लगेगा।
शायद मैं समझती हूँ, इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, रुमाल मेरा बहुत गंदा है और मैं कहूँ कि जब साफ होगा उसके बाद साफ, गंदा है इसको साफ करना है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये साफ तब होगा जब मुझे साफ मिलेगा। शायद आप ऐसा बोल रहे हैं कुछ, जो कभी हो नहीं सकता। हो सकता है कि रुमाल बहुत गंदा है, जब मैं उसको पहली बार साफ करने गई तो साफ तो हुआ, पर जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। फिर दूसरी बार जब किया तो और थोड़ा साफ हुआ, तीसरी बार किया और ज्यादा, तो उसको साफ करने में अब मजा भी आ रहा है कि देखो और उसकी क्लीनलीनेस और उसकी चमक कितनी बढ़ती जा रही है। शायद ये बात होगी, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि बाबा ने ऐसे बोला होगा। क्योंकि गंदा रुमाल है तो गंदा ही रहेगा, उसको ही साफ करेंगे ना, साफ वाले को कोई साफ थोड़ी करना होता है। और किसी को प्रश्न है? समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, उस अनुसार अभी हमारा पुरुषार्थ कैसे हो?
यही है बीज रूप योग स्थिति हो, और कंप्लीट नष्ट हो मोहा, और दुनिया में कोई इंटरेस्ट न हो, वैराग्य। क्योंकि यदि कोई भी बात में मोह होगा तो क्या होगा, बुद्धि वहां जाएंगे, इंटरेस्ट होगा बुद्धि वहां जाएंगे। इसलिए बाबा से सर्व संबंधों का हमें अनुभव करना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये पक्का हो। तो जितना ये पक्का होगा तो बाबा की याद अच्छी रहेगी, और हम अपनी कर्मातीत अवस्था को पाएंगे।
दीदी,
तो इसलिए बाबा ये भी कहते हैं, न दुख दो न दुख लो, दुआएं दो दुआएं लो।
दीदी एक प्रश्न शायद आपके ही क्लास से लिया है इन्होंने, लाइपोसेक्शन यदि देह भान है, आपने लाइपोसेक्शन कुछ मेंशन किया? हाँ, तो लाइपोसेक्शन या लिपोसेक्शन आपने मेंशन किया? हाँ? फैट, फैट निकालते ना आजकल दीदी, फैट निकालते हैं ना,
हाँ।
तो लाइपोसेक्शन आदि अगर देह भान है तो क्या शरीर का ऑपरेशन कराया जाए या नहीं?
शरीर का ऑपरेशन दूसरे कारण से कराओ, जैसे कोई ट्यूमर है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, अपेंडिक्स है ऑपरेशन करना पड़ेगा, कैंसर है ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करना ये नहीं है, पर शरीर को पतला करने के लिए, या नाक ऐसा हो, कान ऐसा हो, आंखें ऐसी हो, ये एक ऑपरेशन करने में बॉडी कॉन्शियसनेस है।
क्लियर हुआ जिसने भी ये प्रश्न पूछा? हाँ, बॉडी कॉन्शियसनेस होगा अगर हम शरीर को सुंदर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीमारी को हटाने के लिए कर रहे हैं तो उसको देहभान नहीं कहा जाएगा। मैं समझती हूँ, समय पूरा हो रहा है। पूरी क्लास, अच्छा ये तो विदेही अवस्था, फरिश्ता, डबल लाइट, इन सब में अंतर क्या है?
विदेही, देह का भान भूल जाना। फरिश्ता मतलब ऊंची अवस्था है जिसमें हम उड़ते रहते हैं। फरिश्ता हमेशा उड़ता दिखाते हैं। फरिश्तों को हमेशा बच्चा दिखाते हैं, मतलब इतना पवित्र हो। और फरिश्ता को कहते हैं उसका औरों से रिश्ता नहीं। और डबल लाइट, नेक्स्ट टू गॉड। तो जैसे परमात्मा के पीछे सेकंड में फरिश्ता है और वो बाबा का मैसेंजर है, ज्ञान देते में होशियार है। डबल लाइट तो जैसे स्थिति है, फरिश्ते की स्थिति डबल लाइट है। फरिश्ता विदेही भी है, पर विदेही को फरिश्ता नहीं कहेंगे।
क्लियर? जिसने भी पूछा, तो अभी समय हो चुका है, हम यहीं पर पूरा करते हैं और दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इतना अमूल्य समय निकाल कर आए। और क्यों खास करके जब भी आप क्लासेस आदि करते हो और फिर कहते हैं क्लासेस तो कर ली लेकिन सीनियर से मिलना बाकी रह गया है, हम पूछते कोई काम है उनसे, कहते नहीं उनसे पर्सनल पूछेंगे कुछ हम, कि पर्सनल, अरे क्लासेस में तो मिला ना सब, लेकिन फिर भी पर्सनल पूछने के लिए एक बहाना होता है कि उनके करीब जाएं। तो आज दीदी ने आप सबको एक साथ आपके बीच उपस्थित होकर लगा कि हमको पर्सनल डायरेक्शन दिया, जिसको लगा कि दीदी ने पर्सनल डायरेक्शन दिया हाथ खड़ा करो। बहुत सुंदर, तो मिस तो नहीं करेंगे ना, दादियां हमको नहीं मिली, बस कोई जूनियर सीनियर आ रहे थे स्पीकर के रूप में, लेकिन दादियों से तो हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। तो दादियों से मुलाकात महसूस हुई? हाँ, तो दीदी को फिर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।
Thank you. के सुगंध से जीवन में सुख है सुख मिला। शांति की छाया